वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, परमानंद श्रीवास्तव। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं नित प्रभावों प्रतिभाओं की, मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह आत्मा की प्रतिमा। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध उत्तेजक विवादग्रस्त लंबी कविता अंधेरे में उनके कठिन तीव्र आत्मसंघर्ष और काव्य संघर्ष की चरम परिणति है। उपर्युक्त पंक्तियाँ इस कविता के पाठक को जरूर ही ऐसा विचार सूत्र देती हैं जिसके सहारे मुक्तिबोध की आत्मसंघर्ष और काव्य संघर्ष की प्रकृति को ठीक ठीक पहचाना जा सकता है। अंधेरे में उन कालजयी कविताओं में है जिनका सतर्क पाठ हर बार नई अर्थ संभावना के प्रति उत्सुक बनाता है। यह न केवल संयोग नहीं है कि अंधेरे में कविता को पढ़ते हुए मुक्तिबोध की अन्य कविताएं, कहानियां और आलोचनात्मक निरूपण एक साथ पुनः विचारणीय हो उठते हैं। अंधेरे में उदाहरण है कि किस तरह एक लंबा काव्यात्मक संघर्ष एक महत्वपूर्ण संदर्भ बहुल सटीक और बहुअर्थमय कविता में मूर्त हो उठता है। दूसरी ओर समय और संदर्भ की निश्चितता, ऐतिहासिकता, फैंटेसी जैसी काव्ययुक्ति के बावजूद इस तरह प्रकट होती है कि उसका पूर्वाग्रह युक्त सरलीकरण अथवा अन्यथाकरण संभव न हो सके। क्या मुक्तिबोध अंधेरे में लिखते हुए इस महत्वपूर्ण समस्या से उलझ रहे थे कि किस प्रकार कंटेंट के वैविध्य को समोटा जाए, या इस कविता की समस्या रचना प्रक्रिया, रूप या शिल्प की समस्या है? क्या भारत इतिहास और संस्कृति पुस्तक का प्रतिबिंबित होना इस कविता की रचना के पीछे मुख्य प्रेरक संदर्भ है? क्या एम्प्रेस मिल की हड़ताल और गोलीकांड जैसे अनुभव अधिक पककर इस कविता के अनुभव वस्तु का हिस्सा बने? ऐसे प्रश्नों पर विचार करने के लिए भी सबसे जरूरी संदर्भ है अंधेरे में कविता का पाठ। कहना चाहिए मूल पाठ, क्योंकि दूसरे पाठ रूपों में कविता का जो अंश गायब है वह कविता की मूल भावना और मुख्य अंतर्वस्तु को समझने के लिए कहीं ज्यादा जरूरी जान पड़ता है। काव्य परिष्कार के तर्क से ऐसे स्थलों को बचा जाना आलोचनात्मक न्याय नहीं कहा गया जाएगा। जो पंक्तियां संपादित नए पाठ में छोड़ दी गई हैं वे इस प्रकार हैं: किंतु वह फटे हुए वस्त्र क्यों पहने हैं, उसका स्वर्ण वर्ण मुख मैला क्यों, वक्ष पर इतना बड़ा घाव कैसे हो गया, उसने कारावास दुख झेला क्यों, उसकी इतनी भयानक स्थिति क्यों है, रोटी उसे कौन पहुंचाता है, कौन पानी देता है, फिर भी उसके मुख पर स्मित क्यों है, प्रचंड शक्तिमान क्यों दिखाई देता है। इन पंक्तियों को जोड़ने या न जोड़ने से क्या समस्या पैदा होती है उस पर विचार बाद में किया जाएगा। पहले कविता के अंतर्वस्तु और संरचना को ही देखें कि उनमें मुक्तिबोध के संघर्ष का परिप्रेक्ष्य क्या है। कविता की आरंभिक पंक्तियां हैं जिंदगी के कमरों में अंधेरे, लगाता है चक्कर कोई एक लगातार। जो चक्कर लगाता है उसके पैरों की आवाज तो आती है पर उसका रूप दिखाई नहीं देता, उसके घूमने की आहट है। तिलश्मी खो में गिरफ्तार कोई एक भीत पार आती हुई पास से, गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनिसा अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक। जो है वह अपनी भूमिका में निश्चित और अनिवार्य है, बस इतना ही, क्योंकि वह दिखता नहीं। तिलश्मी खो में गिरफ्तार होने की ही सीमा है कि वह जिंदगी के अंधेरे कमरों में चक्कर लगाता है, और अब कुछ ऐसा लगता है कि बीच से फूले हुए पलस्तर गिरने लगते हैं, चूने भरे रेत गिरने लगती है, पपड़ियाँ खिसकने लगती हैं, दीवार पर कोई अनजानी अनपहचानी आकृति उभरने लगी है, मुख बन जाता है दीवार पर, नुकीली नाक और भव्य ललाट है दृढ़ हनु। प्रश्न जैसे अपने को ही दोहराता है, कौन मनु? यहाँ मनु को लेकर कितनी ही दूर की कोणियाँ खोजी गई हैं। कौन है यह कामायने के मनु से क्या रिश्ता है? कितना प्रतीक है, कितना प्रतीकाभास। इधर उधर के पहाड़ी के उस पार तालाब है, अंधेरा है, ठहरा हुआ जाल है, और सलिल के श्यामतंग शीशे से कोई श्वेत आकृति उभर आती है, कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है। वह अपनी पहचान भी देता है पर अस्पष्ट आभास से अधिक नहीं। शुरू से ही कविता में कई घटनात्मक मोड़ आते हैं। इतने में अरे अरे, अकस्मात जैसे प्रयोग इसके संकेत हैं। एकाएक तालाब के आसपास अंधेरे में हरे वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं, उनके शीश पर बिजलियां नाच उठती हैं। तभी शाखाएं डालियां झपटती हैं, एक दूसरे पर सिर पटकती हैं। अकस्मात वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलश्मी खो का शिला द्वार खुलता है धड़ से और घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी अंतराल विवर के तम में लाल लाल कुहरा। कुहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। यह रक्तालोक स्नात पुरुष कौन है, इसका संदर्भ आगे है। पहले है उसका व्यक्ति विधान इस रूप में, तेजो प्रभाव में उसका ललाट गौरव गौरवर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख संभावित स्नेह सा प्रिय रूप भव्य अजान बाहु। वह एक साथ सम्मोहित भी करता है और अंत में अजीब सी थर थर अर्थात दशहत पैदा करता है। क्या वही रहस्यमय व्यक्ति कवि के लिए पूर्णतम परम अभिव्यक्ति नहीं है जो आज तक खोज का विषय है, प्रयत्न और संघर्ष का विषय है, सहज उपलब्धि नहीं। निस्संभावना निहित प्रभावों प्रतिमाओं की पूर्ण अवस्था है वह, जिसको पाने के लिए वह अथक संघर्ष है। आत्मतुष्ट अभिव्यक्ति नहीं, खतरनाक चुनौती भरी अभिव्यक्ति, जो दूसरे शब्दों में हृदय मिर्स रहे ज्ञान का तनाव है। आत्मा के सच्ची प्रतिमा। दिलचस्प है कि मुक्तिबोध आत्मा शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं, पर आत्मा से मुक्तिबोध वही अर्थ नहीं लेते जो आध्यात्मिक अनुभव के क्षेत्र में लिया जाता है। बेशक वह कथाकार निर्मल वर्मा की व्याख्या के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा मनुष्य की सबसे आत्मीय चीज है और सबसे अंधेरी वह व्यक्ति से बने होकर भी वैयक्तिक नहीं है, किंतु वह किसी समूह के घेरे में भी नहीं आती क्योंकि वह मुड़कर हर व्यक्ति की निजी अंदरूनी प्राणवत्ता में वास करती है। आत्मा का अपना लैंडस्केप है। मुक्तिबोध अपनी कविता एक अंतरकथा में आत्मा के लिए विशेषता देते हैं गिरिस्तिन। वह गिरिस्तिन आत्मा आधुनिक सुविधावादी सभ्यता के दौर में गहन अग्नि के अधिष्ठान चुनिया चिन्ह रही है। रहस्य साक्षात रक्तालोक स्नात पुरुष और कोई नहीं, यह पूर्णतम परम अभिव्यक्ति है। अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति यह जानना ही खतरनाक मान लिया जाता है। काव्य नायक वाचक या नायक को लगता है कि अचानक बाहर के गुंजान जंगलों से आती हवा ने फूंक मारकर वह मशाल बुझा दी है जो अंधेरे रहस्य भेदन कर रही थी और अंधेरे में औचक पकड़कर उसी ने मौत की सजा दे दी है। सजा कैसी? आखिर अभी तक न पाई गई अभिव्यक्ति के वास्तविक रूप की पहचान का ही तो खतरा उठाया है उसने। इसीलिए संकेत दंड के अभिव्यक्ति के उपकरणों की दुनिया के ही यूनाइटेड कामा किसी काले डैश की घली घनी काली पट्टी ही आंखों में बद गई, किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया, किसी शून्य बिंदु के अंधियारे गड्ढे में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में। यूनाइटेड कामा कविता के दूसरे खंड में अधिक काव्यात्मक वातावरण सूनापन सिहरने लगता है। मेरे ही उर पर धंसती हुई सिर छटपटा रही है शब्दों की लहरें, मीठी है दुस्सह, मीठी भी है और असहनी भी। पहले के संदर्भ को याद करें, स्नेह सब प्रिय रूप और अजीब एक थर थर। तभी द्वार पर बजने लगती हैं सांकल, कोई बुलाता है, कौन? क्या वही रहस्यमय पुरुष, वही रक्तालोक स्नात पुरुष एक बार फिर आया है? यह तो रह रह कर साकल बज रही है, जैसे हृदय को सहला मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा होठों पर होंठ रख कोई सच सच बात सीधे सीधे कहने को तड़प जाए। ऐसा अनुभव दे जाता है वह तो आधी रात इतने अंधेरे मिलने आया है। पहचान वही है, वही द्वितीयमय मुख, वही प्रेम भरा चेहरा, वही ज्योतिलक्ष्मी खो में दिखा था, जो बगैर सुविधाओं का ख्याल किए अवसर अनवसर आता रहता है। चाहे जो भी हो, उसके संकेत जैसे भी हों, उसकी भाषा जैसी भी हो, उसके प्रतीक हृदय को देता ही रहा है बिजली के झटके। अगर वही पूर्णतम परम अभिव्यक्ति है अब तक न पाई हुई अभिव्यक्ति, तो उसके प्रियतर होने की कल्पना स्वाभाविक है। उसके चेहरे पर सुबहें खिलती हैं, गालों पर चट्टानी चमक, पठार की आंखों में करनीली शांति की लहरें, उससे बस लिपटने की सी इच्छा होती है। पर कहाँ संभव होता है यह, मध्यवर्गीय स्वभाव की कमजोरियां आगे आने से रोकती हैं। वह भयानक खड्डे के अंधेरे में छत विछत पड़ा रहता है और उस मिलन के क्षण को, साक्षात के क्षण को टालता रहता है। मध्यवर्ग की दुर्बलता के ऐसे अनुभव के संदर्भ में ही अभी हाल में प्रकाशित एक टिप्पणी में नंदकिशोर नवल ने रक्तालोक स्नात पुरुष या रहस्य पुरुष को सर्वहारा या मजदूर के वर्ग चरित्र के रूप में देखना चाहा है और इसके लिए कविता के पूरे संदर्भ को मुक्तिबोध के वास्तविक जीवन संघर्ष से जोड़कर वांछित निष्कर्ष निकाले हैं। अंधेरे में कविता नई अर्थ संभावनाओं के द्वार बंद नहीं करती, वह बंद कविता नहीं है, स्तर बहुल संभावनापूर्ण कविता है, फिर भी अपने पाठ के प्रति सतर्क करती हुई। वह रहस्यमय व्यक्ति ही काव्य नायक की चेतना में जरूरी बदलाव लाता है, उसके भीरु दुविधाग्रस्त स्वभाव को एकाएक आघात देता हुआ तुंग शिखर के खतरनाक खुरदुरी कगार तट पर शोचनीय स्थिति में छोड़ जाता है, जैसे संघर्ष के तीव्रतम बिंदु पर लाकर कहता है, पार करो पर्वत सिंध के गहवर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। पर यह अपनी दुर्बलताओं से घिरा पीछे हटता है, उसे नहीं चाहिए चरम जोखिम का वक्षण, नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, उसे ऊंचाइयों से डर लगता है, बसती रहे साकल बजने दो, वह जन जैसे आया वैसे ही चला जाएगा। आत्मसमीक्षा के स्वर में वह स्वीकार करता है कि वह तो इतना ही कर सकता है कि खड्डे के अंधेरे में पीड़ाएं समेटे निष्क्रिय निश्चेष्ट पड़ा रहे। वह पूछता है क्या करूं क्या ना करूं। आशंका और संदेह की इस कविता के मूल अभिप्राय हैं। मुक्तिबोध के लिए आशंका इतनी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कविता को शीर्षक दिया था आशंका के द्वीप अंधेरे में। दीप भी अंधेरा भी, यह निरंतर द्वंद्व उससे विकल किए हुए है। जो आया था वह तो तम शून्य में उद्विग्न विवेक विक्षोभ श्री ही जगत समीक्षा छोड़कर चला गया है। उसकी की हुई जगत समीक्षा असहनीय है। मेरे मन के अंधेरे में द्वितीय आकृति सा भविष्य का नशा जो दे गया है, मैं उसे सह नहीं पा रहा हूँ। फिर वही नाटकीय मोड़, इसी हताशा के अनुभव के बीच आत्मभर्त्सना के क्षणों में संकल्प जागता है, नहीं नहीं उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भी भले। पहले के द्वंद्व की परिणति इस चित्त संकल्प में उसकी चुनौती स्वीकार करेगा। वह कमजोर घुटनों को मसलता हुआ लड़खड़ाते कदमों से वह दरवाजा खोलने जाता है। आगे बढ़ने का वह क्षण भीतरी संकल्पना शक्ति का संकेत है। वह पैरों से धरती का फैलाव अनुभव करता है, हाथों से महसूस करता है दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज, आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी। व्यक्तित्वांतर की समस्या मुक्तिबोध के संघर्ष का प्रमुख बिंदु है। तीव्र चेत संकल्प क्षण में संतुलित वेदना जल उठती है, दहक उठती है, सच्चित आनंद की जगह सच्चित वेदना जंग खाई सिटकनी हिलाकर वह दरवाजा खोलता है और बाहर देखता है। वहां कोई नहीं मौजूद है, मौजूद है वही सर्द अंधेरा, सूनी राह, अजीब फैलाव, उदास तारे, ढीली आंखें देखते हैं समूचा विश्व, अंधियारा पीपल पहरा दे रहा है, कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाजें सियारों की ध्वनि से टकराती हैं, दूरियां कांपती हैं, फासले गूंजते हैं। यह सारा वातावरण संकेत है केवल यह बताने के लिए कि बाहर कोई नहीं है, वह जिसकी खोज थी उससे मिलना था जा चुका है। एक और नाटकीय मोड़, इतने में वही आकस्मिकता का नाट्य क्षण, अंधेरे सुने में कोई रात का पंखी चीख कर कहता गया, वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार, वह निकल गया है गांव में शहर में, उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर। मुक्तिबोध अपने आप संकेत देते हैं कि वही रहस्य पुरुष पूर्णतम परम अभिव्यक्ति भी है, अब तक न पाई गई अभिव्यक्ति, उसका तो शिष्य है यद्यपि पलातक, वह तेरी गुरु है, गुरु है। इस अनुभव क्षण में स्वप्न भी है, जागरण भी, दुविधा द्वंद्व का ज्ञान क्षण भी है और ज्ञान का रिश्ता तनाव भी। दिया जल रहा है, पिता लोक प्रसार में काल गल रहा है, सिविल लाइन्स के अपने कमरे में वह देखता है अपने ही पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा, उदास इकहरा स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर भूत जैसी आकृति, क्या वह मैं हूँ, यह है उसका सवाल अपने आप से पूछा गया। रात के 2 बजे हैं, वह किसी अनपेक्षित असंभव घटना या दुर्घटना की प्रतीक्षा में है। अचेतन प्रतीक्षा, आशंका, संदेह, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट न हो जाए। हरिशंकर परसाई ने उस समय खंड को याद दिलाते हुए जिसमें तनावपूर्ण अनुभवों से भरी यह कविता अंधेरे में लिखी गई मुक्तिबोध की मनोस्थिति का बयान इन शब्दों में किया है। नोटेड कामा, मुक्तिबोध भयंकर तनाव में जीते थे। आजकल संन्यास का दावा बहुत किया जा रहा है, मगर मुक्तिबोध का एक चौथाई तनाव भी कोई झेलता तो उनसे आधी उम्र में मर जाता। मृत्यु से तो 2 साल पहले वे जबलपुर आए थे। रात भर वे बड़बड़ाते थे। उन दिनों उनकी पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति पर प्रतिबंध लग चुका था। अंधेरे में का ही रचनाकाल है। उन दिनों मुक्तिबोध बहुत आशंकाग्रस्त थे। इस समय खंड में मुक्तिबोध की मनोरचना कैसी थी, यही देखने के लिए कुछ संदर्भों की ओर आगे हम ध्यान आकृष्ट करेंगे। यहाँ इतना ही कि चीज़ों को जानने से ज़्यादा मूल्यवान है यह आशंका। कविता में एकाएक तोल्स्तॉय आते हैं। हाय हाय तोल्स्तॉय, कैसे मुझे दिख गए सितारों के बीच बीच घूमते न रुकते पृथ्वी को देखते। शायद तोल्स्तॉय नुमा कोई वह आदमी और है, मेरी किसी भीतरी धागे का आखिरी छोर व अनलिखे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन दबी हाय हाय नुमा शायद तोल्स्तॉय नुमा। वही तोल्स्तॉय जिनके लिए निर्मल वर्मा कहते हैं, उपन्यास में तोल्स्तॉय हमारे समस्त नैतिक विश्वासों को खोखला, पंगु और पाखंडी बना देते हैं। उपन्यास पढ़ने के बाद कटघरे में ये नाकरणी नीना नहीं हम अपने को खड़ा पाते हैं। नोटेड कामापन, अनलिखे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन ही जैसे इस कठिन संघर्ष और खोज के रास्ते में आ गया, भीतरी धागे के आखिरी छोर जैसा। मुक्तिबोध की नज़र में तोल्स्तॉय जैसों के साहित्य का महत्व इसलिए है कि वह राष्ट्रकालीन पूंजीवादी सामंतवादी समाज के जन्म लेकर भी स्वयं राष्ट्रग्रस्त नहीं हो पाता। कविता के एक विशेष संदर्भ, किसी मृत्यु दल की शोभा यात्रा। पहले जुलूस की आहट, निस्तब्ध नगर की मध्यराती अंधेरे में दूर से आते बैंड की दबी हुई क्रमागत तानधुन। वह गैलरी में जाता है, देखता है रास्ता कूल तार पथ जैसे मरी हुई खींची हुई काली जिहवा, बिजली के चमकदार दिए जैसे मरे हुए दांतों का चमत्कार नमूना। मृत्यु दल की शोभा यात्रा जो है, धीरे धीरे गैस लाइट नीलाई में रंगे अपार्थिव चेहरे नजर आने लगे, पीछे पीछे काले काले बलवान घोड़ों का जत्था। नींद में खोए शहर की गहन अवचेतना में हलचल सी, सब सो रहे हैं, मैं ही देख रहा हूँ यह रोमांचकारी जादुई करामात। जो जाग रहा है वह तो दुखी है, दुखिया दास कबीर है जागे और उठो। विचित्र है जुलूस यह, कला बत्तू आला काले जारीदार ड्रेस पहने, चमकदार बैंडदल अस्थिरूप यकृत स्वरूप उदर आकृति, आंतों के जालों से बाजे वे दमकते हैं भयंकर। तभी लगा कि बैंड के लोगों के चेहरे परिचित देखे हुए चेहरे से मिलने लगे, जैसे नगर के प्रतिष्ठित पत्रकार वे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। पूंजीवादी सत्ता और उसकी पोषक खास प्रेस व्यवस्था, उनके बीच की साठगांठ अनजान प्रसंग नहीं, निराला कई शब्दों में ही नोटेड कामा, लड़ाई कड़ी से कड़ी चल रही है, अखबार पूंजीपतियों की ही संपत्ति है। नोटेड कामा बंद, संगीन नौकों का चमकता जंगल, टैंक दल मोर्टार आर्टिलरी सैनिकों के पथराए चेहरे, पीछे कैवेलरी काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ आधा भाग कुलतारी भैरव आबदार। इस भयानक जुलूस में दिख गए हैं कई प्रकांड आलोचक विचारक जगमगाते कविगण, मंत्री भी उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद। इन सब के लिए विशेषण है भूत पिशाच का है, भीतर का राक्षसी स्वार्थ। इतने में किसी की निगाह पड़ गई, पहचान लिया गया उसे। शोर सड़क पर मारो गोली दागुस साले को एकदम, जैसे स्वप्न चल रहा था और टूट गया, सब चित्र छिन्न भिन्न। जागते में स्वप्न याद आने लगा, अंधेरे में वही परिचित चेहरे याद आने लगे, इसका ज्ञान हुआ। गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती है मिलकर करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों कार्यालयों केंद्रों में घरों में। यह जानता था जैसे उन्हें समूचा नंगा देख लेना, तय था कि इस नंगे भयानक सच को देखने की सजा उसे मिलेगी ही। मृतदल की शोभा यात्रा फाशिष्ट खतरे का आभास देती है, जिससे मुक्तिबोध प्रत्यक्ष जीवन में भी टकरा रहे थे। अगला संदर्भ जन क्रांति के दमन के लिए सैनिक शासन मार्शल ला। सेना ने सड़कें घेर ली हैं, सांस लगी हुई है, जमाने की जीभ निकल पड़ी है, कोई लगातार पीछा कर रहा है। अंधकार स्तूप सा भयंकर बरगद, कहीं वह अपेक्षितों वांछितों गरीबों के लिए सुरक्षा है, ठिकाना है, वही रहता है सिरफिरा एक जिसके लिए मुक्तिबोध के शब्द हैं। व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिला था रात में, पागल था दिन में, सिरफिरा विक्षिप्त मस्तिष्क, पर रात के अनुभव ने इस पागल को जागृत बुद्धि का दर्जा दे दिया। गाने लगा आत्मोद्धोदमय कोई गान, इधर शुरू हुई समानांतर आत्मसमीक्षा अपने ही चीर फाड़। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उधुरम भरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी अव्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को तगमों सपहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। आत्मभर्सना, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, सपने में भी यह बेचैन करता है। क्या कहूँ किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ दिल्ली या उज्जैन, उधर यह अपराध बोध पीछा करता है, मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लावह, मानो मेरे निष्क्रिय संग यानी संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह घटना। मुक्तिबोध के काव्य नायक को लगता है कि बाहरी दुनिया में क्रियाओं घटनाओं का द्वंद्व जितना ही तीव्र है, उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में द्वंद्व सक्रिय है। फिक्र से फिक्र लगी हुई है, चैन भुला दी है उस पागल ने, नींद गायब, वह बरगद के पास खड़ा है, उसका अपना चेहरा यानी किस अथाह गंभीर सांवले जल में से घुलने लगा है। उधर रात्रि के श्यामल ओस से छालित कोई गुरु गंभीर महान अस्तित्व महकता है लगातार, मानो खंड हर पसारों में उद्यान, गुलाब चमेली के रात्र तिमिर में महकते हो महकते ही रहते हो हर पल। बस ये पता लगता नहीं कि अंधेरे में कि वे उद्यान कहाँ है, मात्र सुगंध है सब ओर और उसमें कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है। पक्षी और दीमक कहानी में जीवन का सार साक्ष अपना गुप्त धन है, उसके अपने गुप्त संघर्ष है, उसका अपना गुप्त नाटक है। एकाएक लगता है किसी अजनबी ने कंधे पर हाथ रखा, थर थर से रेंग गई सिर तक, कंधे पर बरगद पात का स्पर्श जैसे कोई संकेत, किसी की चिट्ठी कोई इंगित, वह भागने लगता है कई कई मोड़ तक, फिर दिखती है किसी एक मूंदे पर की पत्थर सीढ़ी, वह वहीं बैठ जाता है सिर पकड़कर, मूंदा घर अपने भीतर की ही खोह, जहाँ तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर, मणि तेजस्क्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे, झरना है जिन पर प्रबल प्रपात एक। अपनी भीतरी खो के इस परिवर्तन को पहचानता है, निरंतर आत्मलोचन आत्मसंघर्ष से ही संभव है हुआ है इसे पहचानना कि दीप्ति में विलयित रत्न वे नहीं है, अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं। यह एहसास उसे क्षुब्ध करता है कि उसके मध्यवर्गीय दुर्बल मन ने मणि तेजस्क्रिय अनुभवों को गुहावास दे दिया था, लोकहित क्षेत्र से कर दिया था वंचित, जनोपयोग से वर्जित निषिद्ध। अक्रूर यथार्थ से भाग रहा था, उसे खतरनाक समझ रहा था, पर अब वह जान गया है कि जूझना ही तय है, एक फैंटेसी दूसरे फैंटेसी में बदलती है, सीन बदलता है, सुनसान चौराहा सांवला फैला, बीच में वीरान गेरुआ घंटाघर, ऊपर कत्थई बुजुर्ग गुम्बद सांवली हवाओं में काल टहलता है, चांद का मुंह टेढ़ा है कि पंक्तियां याद आती हैं, समलाई चांदनी समय का घंटाघर, निराकार घंटाघर गगन में चुपचाप अनाकार खड़ा है। दमन चक्र के भीतर ही वे सारे अनुभव घटित होते हैं, सुनसान चौराहा बिखरती गतियां, गस्त में घूमती है कोई दुष्ट इच्छा, संगीन नोकों पर टिका हुआ सांवला बंदूक जत्था, टैंकों का दस्ता भी खड़ी खड़ी ऊंघता, परंतु अणा है फिर वही चाटों भागना कई कई मोड़ता, भागती है चप्पल चटचट आवाज चाटों ही पड़ती, श्याम आकाश में संकेत भाषा सी तारों की आंखें चमचमा रही हैं। मेरा दिल डिवरी सा टिमटिमा रहा है। वह जादू के से आकर्षण में खींचा जाता है। जहाँ तिलक की पाषाण मूर्ति है, निसंग स्तब्ध जड़ीभूत पहुँचते ही पाषाण पीठ का हिलने लगती है। मूर्ति से अंगार झड़ते हैं। मुस्कान पत्थरी होठों पर कांपी, बिजली आँखों में बिजली के फूल सुलगते हैं। तभी प्रतिमा की भव्य ललाट की नासिका में से लाल गर्मीला रक्त टपकने लगता है। मस्तक कोश ही फूट पड़ा हो जैसे रुआसा व आश्वस्त करना चाहता है, हम अभी जिंदा हैं, जिंदा चिंता क्या है। छत विछत तिलक की राजनीतिक विफलता प्रकट है। यहीं से संदर्भ बदलता है। वाचक अर्थात काव्य नायक के भीतर अजब से तोड़फोड़ जारी है। इतने में छाती के भीतर ठक ठक, सिर में है धड़धड़ कट रही हड्डी, फिक्र जबरदस्त, विवेक चलाता तीखा सर अंदाज, चल रहा वसूला छीले जा रहा मेरा व निजत्व ही कोई भयानक जिद, कोई जाग उठा मेरे भी अंदर, हट कोई बड़ा पीठ भारी उठ रहा खड़ा हुआ है। इतने में आसमान कांपा व धाए धाए बंदूक धड़ाका, अंधेरे में डूबे मकानों के छप्परों पार से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कराहों की लहरों में पाशव प्राकृत वेदना भयानक थरथरी है। सर्दी में बोरे को उड़कर कोई कांपता है दिखाई देता है। वह मुख, अरे वह मुख, वे गांधी जी, इस तरह पंग आश्चर्य, फटकार भई नैतिक विक्षोभ युक्त, भाग जा हट जा, हम हैं गुजरे गए जमाने के चेहरे। बस इतना ही संकेत देते हैं कि जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। आत्मा का यह पिंजर उठता है। वही रूप, वही आकृति, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, बाह में शिशु जिसे सौंप जाते हैं इसी काव्य नायक को। जब तक वह कुछ कहना चाहे मूर्ति अदृश्य हो जाती है। कैसा है शिशु का स्पर्श, सुकुमार प्यार भरा कोमल, पर भार का गंभीर अनुभव व्यंजित है इसी स्पर्श से। शिशु का रोना जैसे अत्यंत परिचित कारुणी का स्वर, क्षोभ क्रोध का विस्फोट प्रभाव लिए काव्य नायक के हृदय में रक्त का तालाब भर गया है। हृदय से लाल लाल किरणें फूट रही हैं। अनुभव रक्त में संकल्प डूबे हुए अचानक शिशु भी अदृश्य रह जाते हैं। उसकी जगह सूरजमुखी फूल गुच्छे उन स्वर्ण पुष्पों से फैल प्रकाश फैलता है। कंधों पर, सिर पर, गालों पर, तन पर, फिर वे फूलों के गुच्छे भी गायब। आ गई बंदूक, वजनधारी राइफल कंधों पर, कोई एक और जमीन पर पसरा और गिर पड़ा। एकांत प्रिय उसका कोई परिचित व्यक्ति, कलाकार था कैसा, इसके हृदय में चलता था अपना असंग व्यक्तित्व। निष्क्रिय असंग में भी उस पर संदेह किया गया और मारा गया। वह बदिकों के हाथ हो, एक युग का अंत, अब क्या करना है उसे। क्या वह मित्रों की तलाश में निकले, नए नए सहचर मित्रों की तलाश में। कैसे सहचर जिन्हें इस रूप में इस मूल्य विवेक के साथ जाना जा सके। सकर्मक सचित वेदना भास्कर अंतकरण का आयतन में भी चमकता है। अंधेरे में प्रदीपित द्वंद चेतस एक सचित वेदना का फूल। जीने से उतरता ही था कि घेर लिया गया आतताई सत्ता के सम्मुख। अंधेरे कमरे के स्याह सिफर में बैठाया गया उसे। जांच पड़ताल शुरू हुई। दमन चक्र की यातना पूर्ण परिणति, शीश की हड्डी तोड़ी जाने लगी। लोहे की कील पर बड़े हथौड़े लगातार पड़ रहे थे। शीश का मोटा अस्थि कवच निकाल लिया गया कि मस्तक यंत्र में कौन विचार की कौन सी ऊर्जा सक्रिय थी उसका पता लगाया जा सके। दुख स्वप्न के भीतर का भीषण दुख स्वप्न, भीतर कहीं पर गड़े हुए गहरे तलघर अंदर छिपे हुए प्रिंटिंग प्रेस को खोजो, जहां के चुपचाप ख्यालों के पर्चे छपते रहते हैं बांटे जाते। इस संस्था का सेक्रेटरी को खोज निकालो, शायद उसका ही नाम हो आस्था। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, कहाँ है आत्मा। एक चिढ़ी ऊंची आवाज, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एग्जामिन हिम थॉरली। दमन तंत्र की क्रूरता के लिए उपयुक्त विम विधान। यह संकेत भी है कि मिस्टर गुप्ता सत्ताधारी वर्ग तंत्र का प्रतिनिधि चरित्र है। चाबुक चमत्कार दमन तंत्र की निरंतरता का संकेत है, पर आत्मा बहुत कुशल है। इनोटेड कामा समेट कर वह सब वेदना विस्तार करके इकट्ठा, मेरा मन यह जबरन उनकी छोटी सी कड्ढी गठान बांधता सख्त व मजबूत मानो कि पत्थर, जोर लगाकर उसी गठान को हथेलियों से करता है चूर चूर। धूल में बिखरा देता है उसको, मन यह हटता देह की हद से जाता है कहीं पर अलग जगत में। काव्य नायक को सारे अवरोध पार कर यातना की सारी स्थितियां उस पर जनक्रांति से जुड़ती हैं। वह बाधा है इसीलिए खो के खूटे से, पर मीलू पार करता है गुपचाप। पत्रों के रूप में किसी एक जेब में किसी एक फटे हुए मन की व लक्ष्यों के पद पर अग्रसर है। अब काव्य नायक रिहा कर दिया गया है। वह सचेत है कि अब नए साथी खोजेगा। नए साथी जो संकेत या अभिप्राय प्रकृति से लिए गए हैं वे भूमिगत आंदोलन की सी संभावना बताते हैं। काले गुलाब वह स्याह सिवंती, श्याम चमेली, समलाए कमल जो खोहों के जल में, भूमि के भीतर पाताल तल में खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत। इतने में सहसा दूर क्षितिज पर दिखते हैं बिजली की नंगी लताओं से भर रहे सफेद नीले मोतियाई चंपई फूल। गुलाबी उठते हैं वहीं पर हाथ, अकस्मात अग्नि के फूलों को समेटने लगते, वह भी चुनने लगता है जमीन के चमकीले पत्थर बिजली के फूल बनने की कोशिश में। यहाँ का विनायक और कवि अभिन्न उठते हैं। याद आता है कविता का आरंभ जहाँ रहस्यमय रक्तालोक स्नात पुरुष और रहस्यमय परम अभिव्यक्ति का भेद मिट जाता है। यहाँ सारा आत्मसंघर्ष और बाह्य युग संघर्ष काव्य संघर्ष की सीमाओं में सिमट जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ये नोटेड कामा मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। ये नोटेड कामा बंद। किंतु असंतोष मुझको है गहरा, शब्दाभिव्यक्ति भाव का संकेत, काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा, क्या कहूँ मस्तक कुंड में जलती सचित वेदना सच्चाई व गलती, मस्तक शिराओं में तनाव दिन रात। काव्य नायक ने अब यह जान लिया है कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिसमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। फासिज्म के विरुद्ध क्रांति की संभावना का प्रतीक है यह अरुण कमल। फैंटेसी ही सही पर ऐसी जो कल वास्तव होगी। मैं विचरण करता सा हूं एक फैंटेसी में, यह निश्चित है कि फैंटेसी कल वास्तव होगी। मुक्तिबोध एक अंतर कथा। मध्यवर्गीय संस्कारों से संघर्ष करते हुए जिस तरह मुक्तिबोध ने अपनी विशेष दृष्टि प्राप्त की उसी के अनुरूप अंधेरे में का काव्य नायक क्रांति की इस संभावना तक पहुंचता है। मुक्तिबोध ने तार सप्तक के दूसरे संस्करण के लिए लिखित पर अप्रकाशित वक्तव्य में लिखा है, नोटेड कामा, मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ जिसे अपने गली कूचों में रहने वालों का स्नेह प्राप्त हुआ। वे मेरी ही भांति छोटी छोटी हस्तियां हैं, किंतु उनके पिछड़ा संघर्ष अथा प्रेम करने का उनका हार्दिक सामर्थ्य और बौद्धिक जिज्ञासा के साथ ही साथ उनकी साहसिक पहल, उनकी रोमांटिक कल्पना, उनकी राजनीतिक आशा आकांक्षाएँ, उनके समाज नैतिक स्वप्न मेरे चारों चक्कर लगाने लगे। मेरी परिस्थिति अब विस्तृत हो गई, वह फैल कर मैदान बन गई, मैदान बनकर फैलती हुई वह पूरी पृथ्वी बन गई। चेहरे अब सुंदर हो उठे, मैं एक बार के मुक्त और स्वतंत्र हो उठा, इनोटेड कामा बन। इसी वक्तव्य में मुक्तिबोध स्वीकार करते हैं कि इनोटेड कामा सच्चा आशावाद मनुष्य की ज्वलंत वास्तविक उष्मा से उत्पन्न होता है, केवल भविष्य स्वप्न से नहीं, इनोटेड कामा बन। जिन्हें मुक्तिबोध की कविता के स्वप्न फैंटेसी और यथार्थ खटकते हैं वे मुक्तिबोध के आत्मालोचन के साथ कविताओं के विकास दिशा भी देखें, स्वप्न का साक्षात में जागृति में बदलना देखें। काव्य नायक फिर भागता है दम छोड़, ध्वस्त दीवारों के पार कहीं गर्म बांस चल रही है, सत्य से सत्ता का युद्ध, वह अपनी सीमाओं को नजरअंदाज नहीं करता। कमजोरियां सब मेरे संग हैं, पर देखता है कि सहसा अंधेरे की सुरंग गलियों में लोग चल रहे हैं, दृढ़ पद गंभीर अंतस्थ सही सही आग जल रही है, वह बढ़ता है और पीछे रह जाता है अकेला। वर्गीय दुर्बलता के स्वीकृति पर देखता है कि उसके विक्षोभ मणियों को लिए लोग अंधेरे में क्रांति के रास्ते पर सोत्साह बढ़ रहे हैं। आत्मसमीक्षा यहाँ भी हर पल, किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला, चंबल की घाटी में, ये पंक्तियाँ इसी द्वंद्व भाव से परिचित कराती हैं। अपने समाज में अकेला हूँ, मुझसे मुझमें भी भयानक छटपटाहट है, नहीं वह किसी में। इसीलिए अपना श्रेणीगत साम्य है, जिनसे उनसे ही गहरा विद्वेष, विरोध विरोध विरोध। किंतु जो दूर हैं, अलग पृथक हैं, जो अतिभिन्न हैं, मित्र हैं वे ही, परंतु शतगुण धर्म जो उनके ले नहीं पाता हूँ चाहने पर भी। गलियों के अंधेरे में मैं भाग रहा हूँ, इतने में चुपचाप कोई एक दे जाता पर्चा, कोई गुप्त शक्ति हृदय में करने सी लगती है चर्चा। वह पाता है कि वहाँ भी मेरे ही गुप्त विचार व दबी हुई संवेदनाएं व अनुभव पीड़ाएं जगमगा रही हैं। वह चकित है, क्रांति की रोमांटिक कल्पना लेख देखता है कि तारक दलों में भी खिलना है आंगन, खिलता है आंगन जिसमें एक चंपा के फूल चमकते, चमकता है आशय मनोज्ञ मुखों से पारिजात पुष्प महकते। फैंटेसी क्रम जारी है। वह पर्चा पढ़ते हुए हवा में उड़ता है, चक्रवात गतियों में घूमता है नव पर, जमीन पर एक साथ सर्वत्र सचेत उपस्थित। स्वप्नों की कोमल किरणें ही दृढ़भूत कर्म शिलाओं का स्वरूप ले रही हैं। अब मुक्तिबोध दृढ़तापूर्वक यह कहने की स्थिति में है कि वर्तमान समाज चल नहीं सकता। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कहूँ कह दूँ वर्तमान समाज चल नहीं सकता। पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को जन को। विपात्र शीर्षक लंबी कहानी में यह वाक्य आता है, सिंगल नेटवर्क कामा। ये लोग एक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का नारा लगाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता को खरीदने और बेचने की व्यवस्था बरकरार रखते हैं। नेटवर्क कामा अपने सावधान पर दुरु शिल्प के भीतर संघर्ष करते हुए मुक्तिबोध अनुभव करने लगे कि ग्रंथिल मनोस्थितियों वाली कविता को भी उलझाव से बचना चाहिए। जैसी साफ सड़क होती है वैसी ही वह हो मलाई के नाम पत्र। अंधेरे में कविता को परिणति तक ले जाते हुए विचारधारात्मक स्पष्टता का आग्रह दिखाई देने लगता है, उसे उनकी पक्षधरता ही कहा जा सकता है। अंतरात्मा और पक्षधरता, टिप्पणी में मुक्तिबोध लिखते हैं, नेटवर्क कामा, हम अपनी अंतरात्मा की और अपनी जैसी अन्य अंतरात्माओं की पक्षधरता और मौजूद बनाएंगे, इस धारा को दृढ़ करेंगे, विस्तृत करेंगे। नेटवर्क कामा बंद। उधर नगर में भयानक धुआं उठ रहा है, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। अजब है कि सब बुद्धिजीवी कलाकार कवि चिंतक चुप हैं, वे इस क्रूर दमन को मात्र केदवदंती बता रहे हैं, क्योंकि पूंजीवादी शोषणकारी सत्ता से वे नाभिनालबद्ध हैं। उसके हितों के पोषक बौद्धिक वर्ग हैं कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास। दूसरी ओर पहाड़ों के झरने तड़पने लगे, भक्ति और अनहद नाद शब्दों का इस्तेमाल मुक्तिबोध सर्वथा नए अर्थों में कर रहे हैं। भक्ति की अग्नि का उद्रेक भड़कने लगा, फूल के कण में अनहद नाद का कंपन खतरनाक। दादा का सोटा और कका की लाठी भी शामिल है इस जन क्रांति में। युग परिवर्तन की घड़ी है यह, संघर्ष तीव्रतर होता जा रहा है। सैकड़ों नदियां अपने ज्वलंत बिंब फेंकती हैं, इनमें युगों के आंसू डूब जाते हैं। पिताओं की चिंता का उद्विग्न रंग भी, विवेक पीड़ा की बेचैन गहराई, श्रमिक का संताप, उन्हें वेदना नदियों का जल पीकर योजनों का व्यक्तित्वांतर हो रहा है, जो मानव अग्नि के शतदल कोष में जा बैठे हैं। फिर एक स्वप्न भंग, चित्र भी करते हैं, का विनायक अपने को एक बार फिर अकेला पाता है। इसी तरह के द्वंद्वाघात को स्पष्ट करने के लिए नामोर सिंह ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल से शब्द लेकर विरुद्धों के सामंजस्य को अंधेरे में की संरचना की सबसे बड़ी विशेषता कहा है। उसके मस्तिष्क हृदय में छेद पड़ गए हैं, यद्यपि दुखते हुए रंध्रों में गहरा प्रदीप्त ज्योति का रस पस गया बसा है। वह अपनी दुनिया में सपनों के अर्थ खोजता है, आत्मा में चमकीली प्यास भर गई है, मानो कि कल रात किसी अनापेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो जीवन भर के लिए। मानो कि उस क्षण अतिशय मृदु किन्नी बाहों ने आकर कस लिया था इस भांति कि मुझको उस स्वप्न स्पर्श की चुम्बन की याद आ रही है, याद आ रही है। अज्ञात प्रणाली कौन थी, कौन थी। अंतःकरण का आयतन में भी अंधेरे आयनों में सिर उठाती है, पेजितस अनाना आनना प्रतिभामयी मुख लालिमा तेजस्वी लावण्य श्री प्रत्यक्ष बिल्कुल सामने। मुक्तिभूति कुशलाचकों ने सरल निष्कर्षावाद के प्रलोभन में यही अर्थ प्राप्त किया है कि उन्हें प्रेमिका की सख्त जरूरत थी, और ऐसे मधुर संबंधों के विशेषज्ञ भेदियों का सहारा लिया है जिनसे निष्कर्ष की पुष्टि में वांछित समर्थन प्राप्त हो। बहुत ख्यात व्याख्या न करके यहाँ निकारागुआ के कवि अर्नेस्टो कार्डिनल की एक टिप्पणी पर उल्लेख पर्याप्त होगा, यह पूछने पर कि आपने प्रेम कविताएं भी लिखी हैं और क्रांति की कविताएं भी, उनमें आप क्या संबंध या अंतर विरोध मानते हैं। अर्नेस्टो कार्डिनल ने कहा था, दोनों तरह की कविताएं मेरे लिए प्रेम कविताएं हैं। सब और विद्युत तरंगी हलचल, चुंबकीय आकर्षण, हर चीज रोशनी में नया अर्थ देती है। वह उठकर गैलरी में जाता है कि दिख जाता है वही जन जो गुहा में दिखा था, उसी आवाज दी जाए इससे पहले कि वह किसी जन यूथ में खो जाता है। यह संकेत देकर अनखोजी निध समृद्धि का वह परम उत्कर्ष, परम अभिव्यक्ति, मैं उसका शिष्य हूँ, वह मेरी गुरु है, गुरु है। वह जो रहस्य पुरुष, रक्ता लोक स्नात पुरुष है, वही है परम अभिव्यक्ति, वही है अत्यंत उद्विग्न ज्ञान तनाव या सकर्मक प्रेम की अतिशयता जो प्रत्यक्ष दिखती है। फटेहालू काव्य नायक हर गली, हर सड़क पर, हर एक चेहरे गतिविधि को जांचता परखता है। हर आत्मा का इतिहास, हर देश की राजनीतिक परिस्थिति, जहां मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। अंधेर में कविता का मुख्य अभिप्राय यदि अस्मिता की खोज ही है तो उसे परम अभिव्यक्ति की खोज से संबद्ध करके ही देखना होगा। उसमें बृहत्तर सभ्यता समीक्षा भी शामिल है और जन क्रांति का स्वप्न भी। वस्तुतः अंधेरे में कविता की अर्थभूमि महाकाव्यात्मक कल्पना और नाटकीय संयोजन की दृष्टि से चकित करने वाली है। सरल क्रांतिवाद मुक्तिबोध जैसे कवि की सीमा नहीं है, कठिन पर सावधान शिल्प और उनकी निरंतर संघर्ष से ही संभव हुआ है। भीतर संघर्ष, भीतर बाहर के संघर्ष का द्वंद्व उनके यहाँ बना रहता है। अंतःकरण के आयतन की सीमा के विरुद्ध मुक्तिबोध का अथक संघर्ष कविताओं में और कविताओं के बाहर जाना पहचाना है। अंधेरे में कविता भी स्वप्न कथा फैंटेसी ही है, पर मुक्तिबोध के अनुसार दिशा और साहित्य फैंटेसी का मर्म प्राण है। एक साहित्य की डायरी। मुक्तिबोध ने तार सप्तक के अपने वक्तव्य में कहा है, मानसिक द्वंद्व मेरे स्वभाव में पद्यमूल है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जब मुक्तिबोध के आत्मसंघर्ष को मार्क्सवाद की संगति में नहीं देख पाते तो मान लेते हैं कि वे रहस्यवादी अथवा अस्तित्ववादी हैं। अंधेरे में कविता की उनकी व्याख्या इसी दृष्टि पर आधारित है कि मुक्तिबोध की ज्ञानात्मक संवेदना या संवेदनात्मक ज्ञान का कोई अर्थ नहीं, वे अस्तित्ववादी भावधारा का ही निकट है। इसीलिए डॉक्टर शर्मा को मुक्तिबोध संबंधी आलोचना, मुक्तिबोध संबंधी उनके पूर्वाग्रहों के अनुरूप ही एक तरह का तार्किक ढांचा निर्मित करती है। मुक्तिबोध का द्वंद्व भाव उनके लिए द्वैत भाव हो जाता है। मुक्तिबोध की मनोरचना के जड़ में इस द्वैत भाव को दिखाना या प्रमाणित करना ही उनका उद्देश्य जान पड़ता है। डॉक्टर शर्मा का कहना है, ये नोटेड कामा, मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। इस कविता में एक ओर वह निम्न वर्ग से अलग होकर सर्वहारा वर्ग की संगति में व्यक्तित्व रूपांतरण की अपनी सामान्य समस्या का विवेचन करते हैं, दूसरी ओर वह अपने उत्तेजित त्रस्त मन की असामान्य अवस्था का चित्रण करते हैं। यूनाइटेड कामन, नई कविता और अस्तित्ववाद। दूसरी ओर डॉक्टर नामोर सिंह का स्पष्टीकरण है, यूनाइटेड कामा, एक तरह से देखें तो मुक्तिबोध की कविताओं में काव्य नायक के रूप में व्यक्त होने वाला वह चरित्र उन कविताओं का विपरीत या संभाव्य पाठक भी है जिसे वे संबोधित प्रतीत होती है। निश्चय ही यह काव्य नायक मुक्तिबोध का प्रतिरूप नहीं है और न उसे मुक्तिबोध समझने का भ्रम ही होना चाहिए। यह कवि की कल्प सृष्टि है, बल्कि कल्प सृष्टियों में से एक, ठीक उसी तरह जैसे एक साहित्य की डायरी का मैं और क्लाड इथरली, पक्षी और दीमक, विपात्र आदि कहानियों का मैं। इस चरित्र को प्रबुद्ध, प्रेरित और सक्रिय करके उसकी आस्था को दृढ़ करने के लिए मुक्तिबोध ने यह आत्मपरक ढंग अपनाया है। नोटेड कामापन, कविता के नए प्रतिमान। जब नामोर सिंह ने अस्मिता की खोज को अंधेरे में का मूल तथ्य बताया था तो इस पर अधिक बल दिया था कि इनोटेड कामा, इस खोज में किसी प्रकार की आध्यात्मिकता या रहस्यवाद नहीं, बल्कि गली सड़क की गतिविधि, राजनीतिक परिस्थिति और अनेक मानव चरित्रों की आत्मा के इतिहास का वास्तविक परिवेश है। इनोटेड कामा बंद। पिता के नए प्रतिपाल। नामोर सिंह के पिता की खोज की व्याख्या से कुछ अन्य समस्याएं पैदा हुई, जैसे विभक्त व्यक्तित्व और आत्मनिर्वासन की समस्या। नाटकीय कौशल के लिए कविता का मैं दो व्यक्ति चरित्रों में विभक्त कर दिया गया है। एक है काव्य नायक मैं और दूसरा है उसका प्रतिरूप वह। यह विभाजन वस्तुतः एक नाटकीय कौशल मात्र नहीं बल्कि उसका आधार आत्मनिर्वासन सेल्फ एलियनेशन है। अंधेरे में काव्य नायक एक आत्मनिर्वासित व्यक्ति है जिसके आत्मनिर्वासन का प्रतीक है उसका गुहावास। नामोर सिंह की इस स्थापना पर काफ़ी बहसें हो चुकी हैं। सब जानते हैं कि अंधेरे में कविता के व्याख्या के सिलसिले में जहां जिन पदों का इस्तेमाल हुआ है आत्मनिर्वासन और अस्मिता का लोप, लॉस ऑफ सेल्फ और लॉस ऑफ आइडेंटिटी, वे अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद दोनों विचारधाराओं के क्षेत्र में प्रचलित हैं। यदि नामोर सिंह ने विस्तृत व्याख्या के साथ अंधेरे में पुनश्च टिप्पणी के अंतर्गत स्पष्ट किया है कि मार्क्सवाद की धारणा के अंतर्गत ही उन्होंने अंधेरे में कविता की मूल समस्या अस्मिता की खोज को माना है, तो इसके लिए प्रबल तार्किक आधार मुक्तिबोध की कविताओं और काव्य चिंतन में ही मौजूद है। यहाँ प्रसंगवश नामोर सिंह के स्पष्टीकरण के से यह अंश उद्धृत है। यूनाइटेड कामा मार्क्स की दृष्टि में अलगाव और रैकरण पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़े अभिशाप है। इससे मजदूर अपनी उपज से ही अलग नहीं होता बल्कि अपने आप से भी अलग हो जाता है और वह इस प्रक्रिया में मानव स्वत्व के साथ ही मानव संभावनाओं से वंचित रह जाता है। मार्क्स के अनुसार इस अलगाव से समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं रहता, यहाँ तक कि स्वयं पूंजीपति भी इसका शिकार होता है और वह भी अपनी मानवीयता खोकर एक जड़ धन पशु में बदल जाता है, किंतु इसका सबसे अमानुषिक प्रभाव मजदूर पर पड़ता है। खोने की इस प्रक्रिया में वह इस हद तक सर्वहारा हो जाता है कि अंततः उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता सिवाय अपनी हथकड़ियों और बेड़ियों के। इनोटेड कामन कविता के नए प्रतिमान। कठिनाई यह है कि जिन्हें अंततः मुक्तिबोध की कविता यथार्थवादी धारा के बाहर का था तथा उसका विरोधी कवि ही प्रमाणित करना है, वे अभिव्यक्ति खोज या आत्मसंघर्ष और के अभिप्रायों को अस्तित्ववाद या रहस्यवाद के दायरे में ही परिभाषित करते रहेंगे। जिन्हें मुक्तिबोध की इस कविता की क्रांतिकारी परिणति एकदम सीधी स्पष्ट तर्कसंगत जान पड़ेगी, वे भी अभिव्यक्ति की खोज के वस्तुगत संदर्भ की बहुत जांच पड़ताल नहीं करना चाहेंगे। क्या वे नामोर सिंह की इस सतर्क पुनः स्थापना पर विचार करना जरूरी समझेंगे? कामा अंधेरे में कविता का मूल कथ्य हर तरह के अलगाव के विरुद्ध है। अस्मिता की खोज इसी अलगाव विरोध का दूसरा नाम है। कामा जिन्हें आलोचना पर भरोसा न हो वे कविता पर ही भरोसा करें। इसलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि प्रत्येक चरित्र व हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनीतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श विवेक प्रक्रिया क्रियागत प्रणति खोजता हूँ पठार पहाड़ समंदर जहाँ मिल सके मुझे मेरी व खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। श्रीकांत वर्मा में चांद का मुंह टिढ़ाया संग्रह प्रस्तुत करते हुए कहा था, यूनाइटेड कामा किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास न हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। जिंदगी के एक एक स्नायु के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीकर मुक्तिबोध ने अपने स्मृति के लिए सैकड़ों कविताएं छोड़ी हैं और वे ये कविताएं उनका जीवन वृत्तांत है। इसी चयन की भूमिका में शमशेर ने जीवन वृत्तांत के रूप में देखी गई कविताओं का वस्तु संदर्भ निर्दिष्ट करते हुए कहना जरूरी समझा। उनका कवि व्यक्तित्व सबसे अलग और अकेला लगता है मगर उनकी भावनाओं की जड़ें मध्यवर्गीय समाज में अब सबकी समस्याओं से उलझ हुई थी। अंधेरे में कविता के पृष्ठभूमि बताते हुए शमशेर ने बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया था। मुक्तिबोध शुक्रवारी में तिलक की मूर्ति के पास ही गली में रहा करते थे। एम्प्रेस मिल के मजदूरों पर जब गोली चली तो रिपोर्टर की हैसियत से वे घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने सिरों का फटना और खून का बहाना अपनी आंखों से देखा। अंधेरे में शीर्षक उनकी सशक्त और मार्मिक कविता उनके नागपुर जीवन के बहुत सारे संदर्भ अपने अंदर समेटे हुए हैं। आश्चर्य है कि जिस कवि को डॉक्टर रामलीला शर्मा अमूर्त रहस्यात्मक अस्तित्ववादी गुहावास में खोया हुआ बताते हैं, उसे सौंदर्यवादी कहे जाने वाले शमशेर ने सीधे अब्स्ट्रैक्ट नहीं ठोस कहा था। और भी यूनाइटेड कहाँ बहती हवाओं सा लिरिकल अर्थहीन सा कोमल न कुछ नहीं बल्कि प्रत्येक पंक्ति में चित्र के उभार को और भी घूरती हैं और भी ताड़ते हुए आँख से प्रत्यक्ष करता हुआ अनुभूति के यथार्थ से कतराता हुआ नहीं बल्कि अपने तर्क और भावना के कुदाल से अनुभव की कड़ी धरती को लगातार गहरे खोदता जाता है। यूनाइटेड कामन एक कृति की पूर्ण निरपेक्ष स्वायत्तता के तर्क से अंधेरे में कि अनुभव मर्म को जानना कठिन है। अंधेरे में को पढ़ते हुए यदि उनकी कविताएं ब्रह्म राक्षस चकमक की चिंगारियां अंतकरण का आयतन याद आती हैं तो विपात्र पक्षी और दीपक क्लाड इथरली कहानियां भी याद आती हैं। बल्कि कई बार लगता है कि मुक्तिबोध की गहरी रचनात्मकता के प्रमुख सूत्र इन रचनाओं को एक साथ देखने से हासिल हो सकते हैं। ब्रह्म राक्षस को मानवीय इतिहास की एक दुर्दमनीय प्रवृत्ति अनविक्षा का प्रतीक कहा गया है। उसकी काव्य नायक की चरम खोज भी अंधेरे में एक कठिनतम खोज के अनुरूप जान पड़ती है। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं। अंधेरे में की पंक्तियां यूनाइटेड कॉमा वही जो सिर्फ फिरा पागल कतई था आज का एक जागृत बुद्धि है प्रज्वलित ही है। यूनाइटेड कॉमा पढ़कर क्लाड इथरली कहानी की वह व्याख्या याद आती है। यूनाइटेड कॉमा लेकिन जो आदमी आत्मा की आवाज़ जरूरत से ज़्यादा सुन करके हमेशा बेचैन रहा करता है और उस बेचैनी में भीतर के हुक्म का पालन करता है वह निहायत पागल है। यूनाइटेड कॉमा बंद दुःस्वप्न के भीतर का भीषण दुःस्वप्न मुक्तिबोध की कविताओं कहानियों में एक ही तरह का अनुभव संसार निर्मित करता है। जिस तरह के बिंब योजना के जरिए मुक्तिबोध यह दुनिया बनाते हैं कि वह संश्लिष्ट भी है और आवेगात्मक भी। प्रसंगवश यहाँ कामायनी के आधुनिक बोध और अंधेरे में के आधुनिक बोध की तुलना की जा सकती है। मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार में लिखा है। इंटर कामा कामायनी एक आधुनिक काव्य है जिसमें आधुनिक प्रवृत्तियों तथ्यों तथा प्रश्नों को उपस्थित किया गया है जो कि इन आधुनिक तत्वों की को विशाल फैंटेसी तथा उसके भीतर अनेक अन फैंटेसियों में गुला मिला दिया गया है तथा वर्तमान जीवन से आकर्षक दूरी पैदा की गई है। इसीलिए कामायनी हमें ऐतिहासिक महाकाव्य जैसी कुछ मालूम होती है। पर यही उन्हें यह कहना भी जरूरी जान पड़ा कि कामायनी के आधुनिक बोध की सीमा यह है कि उसमें प्रश्नों की सच्चाई का पर्यवसान झूठे उत्तरों में है और वह प्रसाद यथार्थ बोध की ही सीमा के कारण क्योंकि वे उस पर अपनी भाववादी आदर्शवादी पद्धति से वास्तविकताओं पर मुलम्मा चढ़ाने का यत्न करते हैं। कहना जरूरी नहीं कि अंधेरे में एक आधुनिक बोध तीखे यथार्थ बोध से संपन्न है और फैंटेसी के उपयोग के बावजूद उस पर किसी तरह का भाववाद या आदर्शवाद हावी नहीं है। फैंटेसी भी यहाँ यथार्थ के अस्त्रों को खोलने में ही सार्थक है। कामायनी का फलक निश्चय ही अंधेरे में की तुलना में अधिक विशाल है। वह देवताओं की स्वप्न दृष्टि खंडित होने के बाद मानव सृष्टि की संभावनाओं तक का बृहत्तर संदर्भ अपने में समेटे हुए है पर कामायनी में प्रश्न अनुपस्थित है द्वंद्व गायब है और एक काल्पनिक समरसता का सिद्धांत कृति के अंत को सपाट सामान्य बना देता है। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का कैनवस उतना विशाल न होते हुए भी भीतर बाहर की वास्तविकताओं के द्वंद्व को विस्तृत पटकथा में बदल देता है। इसकी भाषा ही तेजस्क्रिय नहीं है अंतर्वस्तु भी प्रश्नमय है समस्याग्रस्त है और ये समस्याएँ किसी कल्पित भावालोक की नहीं है किसी समाज के अनोखी विषम वर्ग संरचना और वर्गीय ग्रंथियों के सघन विश्लेषण में पैदा हुई हैं। ये समस्याएं आधुनिक जीवन की जटिलताओं से उतने ही गहरे अर्थ में संबद्ध हैं जितने गहरे अर्थ में आत्मसंभव अभिव्यक्ति की खोज के संघर्ष से जुड़ी हैं। जहाँ कामायनी में प्रसाद की काव्य नायक की आत्मपरक आत्मभर्सना लिरिकल काव्य की पर्सनल क्वालिटी पैदा करती है वहाँ अंधेरे में कविता के काव्य नायक का आत्मसंघर्ष नाटकीय तनाव और औपन्यासिक व्यक्ति के व्याप्ति के कठिन रूपों को आत्मसात करते हुए महाकाव्यात्मक ऊंचाई प्राप्त करता है। वास्तविक जीवन की क्रिया प्रतिक्रियाएं घात प्रतिघात और तीव्र द्वंद्व ही में अंधेरे में का मूल्य कथ्य है। रीता सामरस्य कामायनी की सीमा है तीखी प्रश्नात्मकता अंधेरे में की ताकत। मुक्तिबोध की फैंटेसी भी यथार्थ वैज्ञानिक बोध से वंचित नहीं है जबकि कामायनी की फैंटेसी यथार्थ के वैज्ञानिक बोध के विरुद्ध भाववादी आदर्शवादी समाधानों की पूर्व संकल्पना से संयोजित है। पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र को याद करते हुए प्रभाकर माचवे इस कविता को गिवेर्निका इन वर्स कहते हैं। और इसी जमीन पर मुक्तिबोध का कवि व्यक्तित्व शमशेर की दृष्टि में वाल्ट व्हिटमैन और मायाकोव्स्की के शिल्प से टक्कर लेता जान पड़ता है। अपनी जमीन पर अप्रतिहत और अद्वितीय का अंधेरे में कृति की राह से गुजरने वालों के लिए दोहरी चुनौती है। कैसे वे अंधेरे में के स्वायत्त संगठन को समझें और कैसे कठोर वस्तु यथार्थ की बाहरी टकराहटों की कृति की आंतरिक सत्ता में पहचानें और निर्दिष्ट करें। कहना न होगा कि अंधेरे में की सार्थकता उसके जटिल आंतरिक संगठन और बाहर फैले इतिहास के द्वंद्व में ही निहित है।